ये आकाशवाणी है। अब आप दिव्या तोमर से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि आप सरकार ने 10 वर्ष के शासन के दौरान दिल्ली को आपदा की ओर धकेल दिया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 4,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि सरकार जनता को पानी और सीवर की सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली सरकार केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पिछले 10 वर्षों में शिक्षा को बहुत नुकसान पहुंचाया है और उसने केंद्र के दिए गए समग्र शिक्षा फंड का 50% हिस्सा भी शिक्षा पर खर्च नहीं किया है। श्री मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी के अशोक विहार में झुग्गी बस्तियों के निवासियों के लिए लगभग 1,700 नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन किया और पात्र लाभार्थियों को चाबियां सौंपी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दो शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और सरोजनी नगर में जनरल पूल आवासीय आवास टाइप 2 क्वार्टर का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने द्वारका में लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एकीकृत कार्यालय परिसर का भी उद्घाटन किया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में 600 करोड़ रुपए से अधिक की 3 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के दौरान प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण ओडिशा के भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रवासी भारतीयों को प्रदान किए जाने वाला उच्चतम सम्मान है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत 110 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र है। नई दिल्ली में आज भारतीय स्टार्टअप पर मीडिया से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश की स्टार्टअप यात्रा नवाचारी विचारों वाले कई लोगों के लिए परिवर्तनकारी और उत्साहवर्धक रही है। श्री गोयल ने कहा कि इस वर्ष का स्टार्टअप महाकुंभ एक ऐतिहासिक महाकुंभ बनने जा रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली अब पूरे देश में पूर्ण रूप से संचालित है। पिछले वर्ष दिसंबर में ईपीएफओ के सभी 122 पेंशन वितरण क्षेत्रीय कार्यालयों से जुड़े 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को लगभग 1,570 करोड़ रुपए की पेंशन वितरित की गई। श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि इस प्रणाली के माध्यम से पेंशनभोगी देश में कहीं भी किसी भी बैंक से अपनी पेंशन का भुगतान तेजी से और बिना किसी परेशानी के कर पाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने चीन से ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि ब्रह्मपुत्र के निचले क्षेत्रों के राज्यों के हितों को इस नदी के ऊपरी इलाकों की गतिविधियों से कोई नुकसान नहीं होगा। चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की यारलुंग संगपो नदी पर बन रही पनबिजली परियोजना से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि नदी के जल को इस्तेमाल करने के अधिकार के साथ निचले तटवर्ती देश के रूप में भारत ने अपनी चिंताओं को दोहराया है। गजा में पिछली रात और आज सुबह हुए इसराइली हमलों में 30 लोगों की मौत हो गई। अल अक्सा अस्पताल के अनुसार केंद्रीय गजा में कई स्थानों पर हुए हमलों में एक दर्जन से ज्यादा महिलाओं और बच्चों की मौत हुई है। देश के उत्तरी भाग में घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से कई विमानों और रेलगाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कम दृश्यता के कारण लगभग 50 उड़ानों में देरी हुई। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन तक उत्तरी, पूर्वी और मध्य भारत में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा के राउरकेला में हॉकी इंडिया लीग में आज रात 8:15 बजे से तमिलनाडु ड्रैगन्स का मुकाबला वेदांता कलिंगा लैंसर्स से होगा। पहले खो खो विश्व कप के लिए आज ट्रॉफी और शुभंकर का अनावरण किया गया। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 13 से 19 जनवरी तक होने वाली इस प्रतियोगिता में 21 पुरुष और 20 महिला टीमें शामिल होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।